نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو امت کا رشتہ ہے وہ احساس کا رشتہ ہے. کچھ رشتے احساس کے ہوتے ہیں. بڑا جوان عقل مند ذی شعور آدمی اپنے بیٹے کے منہ پہ دو تھپڑ مار کے, اس نے بہت بڑی غلطی کی لیکن اس کے منہ پہ دو تھپڑ مارے اور خود اس نے رونا شروع کر دیا. حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے نا وہ احساس کا ہے, اور قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, فرمایا یہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. ہر بات میں ہم کہتے ہیں میری جان نکل گئی, وہ میری جان پہ بن گئی, وہ میری جان پہ پڑ گئی. جان کتنی قریب ہے کوئی نہیں بتا سکتا, تو جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے. مسئلہ ہوتا ہے کسی چیز کو محسوس کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے نا, رب جب کسی کو اولاد دیتا ہے تو اولاد کی محبت خود دل میں پیدا کر دیتا ہے. بندہ اس پہ پردہ ڈال دے سخت ہو جائے بات الگ ہے, ورنہ اولاد کی محبت دل میں موجود ہے, ہوتی ہے. ماں باپ کا پیار اللہ دل میں دے کے بھیجتا ہے. لوگ اپنے اوپر بوجھ کریں, ظلم کریں اور اس محبت کو ختم کر دیں الگ بات ہے, ورنہ یہ انسان کے وجود میں شامل ہے. دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار ہے اور حضور کے ساتھ جو امت کا رشتہ ہے, یہ ہماری روحوں کا معاملہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس محبت کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں. کبھی دولت سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں, کبھی شہرت سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں, کبھی اپنے آپ سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں. یہ بہت سارے لوگ ہیں بیچارے, سارا دن آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں, اپنی فوٹو اپنے موبائل پہ لگا کے سارا دن دیکھتے ہیں, نفس پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں, اپنی خوبیاں سارا دن بیان کرتے رہتے ہیں, اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرتے ہیں, اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں. بھائی پیار اللہ نے دل میں دے کے بھیجا ہے, اور وہ پیار دیا ہے مدینے والے محبوب کا. اب ہم اس کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں تو وہ مس یوز ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کا صحیح استعمال کریں, ہمارا زمانہ ہے بحث کا, محبت کا نہیں, ناراض نہ ہونا میری بات پہ, لیکن یہ بحث کا زمانہ ہے. آپ یہاں بٹھا لیں دو چار بندوں کو, ان سے کہیں کہ پانچ گھنٹے بحث کرنی ہے, بتاؤ کون کون سا مولوی غلط ہے. آپ کرا لیں پانچ گھنٹے بحث, پھر ان سے کہیں کہ جتنے پیر اس وقت ہیں نا مارکیٹ میں, سب کی پگڑیوں کے پیٹ کھول لیں, معاذ اللہ اب جو ہی کرنی ہے تو کرا لیں باتیں, آپ جتنی مرضی کرا لیں. اس کے بعد آپ کہیں سیاستدانوں کے پیچھے پڑ جاؤ تو کرا لو باتیں, لیکن انہیں دو آدمیوں کی ہاتھوں میں آپ تسبیح دیں, ان سے کہیں زیادہ نہیں, صرف پانچ پانچ سو بار درود شریف پڑھو, یا نیند آ جاتی ہے یا کام یاد آ جاتا ہے. اور میرے بھائی آپ بحث کرا لیں جتنی مرضی, کتنا زمانہ بیت گیا ہمیں سنتے ہوئے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں تو دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں. میرے پاس رپورٹیں موجود ہیں, تجزیاتی رپورٹیں, چلے کنفرم نہیں لیکن جو ادارے رپورٹیں بیان کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کتنے لوگ ہیں جو ہم مسلوں پہ بیٹھتے ہیں, کون سی مسجد ہے جو نماز کے بعد کتنی دیر کے بعد بند ہو جاتی ہے. پہلے کبھی گھروں کے اندر سے تلاوت کی آوازیں آتی تھیں. حضرت فضیل بن ایاز جیسے صوفی کہتے ہیں کہ میں جس بندے کی تلاوت سن کے توبہ کر گیا ہوں, میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا, وہ تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا. میری بات کو سمجھے, ہمارا وہ جو ذائقہ تھا نا, وہ جو ذوق تھا, وہ جو توانائی تھی ہماری, جو ہمارا احساس کا رشتہ تھا دین کے ساتھ, ہم نے بحث کی نظر کر دی. اور ہمارے بہت سارے نوجوان بےچارے الجھ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں ابھی تو میں نے فیصلہ ہی نہیں کیا کہ صحیح کون ہے, کیونکہ بحث ہی بڑی ہوتی ہے, اہل حق میں بڑی بحث ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت سارے لوگ الجھ جاتے ہیں. اور مجھے اور آپ کو بھی بڑا ہی شوق ہو گیا ہے. میرے دوست دین ہماری تسلی کراتا ہے, دین ہماری, لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سیکھنے کے لیے دین سیکھیں. اگر بحث کے لیے سیکھیں گے پھر کبھی تسلی, ہم سیکھنے کے لیے نہیں سیکھتے, بحث کرتے ہیں, الجھے رہتے ہیں, مزہ لینے والے اپنا مزہ لے کے چلے بھی جاتے ہیں. وہ جنہوں نے سرکار سے پیار کرنا تھا ملا جامی کی طرح, وہ دور بیٹھ کے بھی حضوری کے مزے لے کے چلے گئے, وہ ملا رومی کی طرح وہ درد سوز کیفیت کر کے چلے بھی گئے. ہماری ابھی بحث ہی نہیں ختم ہوئی, یکم محرم سے دس محرم تک بحث ہوتی ہے, امام حسین کی نیاز پکانی چاہیے کہ نہیں, और यकम रबी अव्वल से तीस रबी अव्वल तक बहस होती है झंडियाँ लगानी चाहिए कि नहीं, मिलाद करना चाहिए। और जिसकी सात नस्लें एक ही घर में मिलाद की मैं आपको सजा रही है ना सात नस्लों से, वो भी हर साल पूछता है, वैसे हजरत साहब जायज है। मैं क्या तू ही नहीं मन साढ़े को सारी उम्र आगे किधर जाना भाई, बस करें, कितने को बहस करें, अमल करें, प्यार करें। अकल के घोड़े दौड़ाने वाले लोग बड़े रस्ते में रह गए। ओ यारो, अल्लामा इकबाल बड़े मंतकी थे, फलसफी थे, लेकिन आखिरी उम्र में रोया करते थे। खिर्द अकल को कहते हैं, फरमाते थे खिर्द की गुत्थियां सुलझा चुका हूं, या रब मुझे साहिब जुनू कर दे। अल्लाह मैंने अकल की सारी गुत्थियां सुलझा ली, अब मैं मजनू बन के जीना चाहता हूँ, मुझे अपने रसूलुल्लाह का दीवाना बना दे। या अल्लाह मेरे ऊपर मेहरबानी फरमा, मैंने बड़ी अकल दौड़ा ली बड़ी। और इकबाल कहते हैं कि जो अकल होती है ना अकल, ये 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट नहीं तनकीद करती, ये 24 घंटे तनकीद करती। इकबाल कहने लगे अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, यानी एक मिनट भी फारग बैठती अकल को तनकीद से। इस तरह कर इश्क पर ईमान की बुनियाद रख, इश्क पर ईमान की, भाई वो लुत्फ वाला माहौल कब आएगा सारी जिंदगी। मुल्ला रूमी ने बड़ी शानदार बात कही है, बड़ी शानदार, ये नौजवानों के काम आएगी अगर याद रखेंगे तो। आरिफ रूमी फरमाया करते थे अल्लाह ताला ने ना लोगों को अकल दी थी इस्तेमाल करने के लिए, और लोग सारी जिंदगी अकल के हाथों इस्तेमाल होते रहे। अल्लाह ने अकल दी थी और सारी जिंदगी अकल के हाथों बहस होती रही, उलझे रहे, कमाल हो गई। मेरे दोस्तों, कलमा पढ़ने से पहले खुल के सोचना चाहिए, लेकिन जब महबूब का कलमा पढ़ लिया ना, अब सोचने का टाइम खत्म है। कलमा पढ़ने वाले सोचा नहीं करते, वो हुक्म पर अमल किया करते। वो दलील पूछना, वो हिकमत पूछना, हमारे यहाँ लोग पूछते हैं जी ये सूद क्यों हराम किया जी शरीयत ने, पूरी दुनिया सूद पे चल रही है। हमारे एक साबिक सदर साहब ने एक दफा कह दिया था उलमा को कोशिश करें कि गुंजाइश निकल आए तो, क्यों जी हिकमत क्या है एक बात मुझे बताओ। गुलामों ने भी कभी हिकमत पूछी है? आपने गुलाम से कहा कि जा यार चीनी ले आ 1000 रुपए की, वो कहता है सर जी सेने पड़े 500 की मंगाए, तो आप उसे हिकमत बताएंगे पहले कि 1000 की क्यों मंगा रहा हूं? बताए ना जी, आप हिकमत भी पूछते हैं हर बात की, ये क्यों है ये कैसे है। तो वो आपसे कहता है जनाब 1000 रुपए की क्यों मंगा रहे हो, 500 की मंगाए, तो आप कहेंगे तू इस तरह कर चुप करके जा, ज्यादा बातें यहाँ जीव गुलाम है ये। सुभान अल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल ना बाजार से गुलाम खरीद के लाए, कहते हैं उसके चेहरे पर रोशनी बड़ी थी तो मैंने खरीद लिया। मैं खरीद के लाया तो मैंने उसे पूछा तेरा नाम क्या है, तो इमाम साहब फरमाते हैं उसने आँख खोली तो कहने लगा हुजूर गुलामों का नाम नहीं होता, आप किसी और को भी आवाज़ देंगे तो मैं समझूंगा मुझे ही बुला रहे हैं। आप फरमाने लगे, उसके पहले जुमले ने ना मेरे वजूद पे कैफियत तारी कर दी। मैंने उसे दूसरा सवाल किया, मैंने कहा तू रहेगा कहाँ, कमरे पसंद कर ले, तो उसने आंखें झुका ली और मेरे कदमों के करीब आके बैठ गया, कहने लगा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते, जहां इशारा करेंगे ना मैं चुप करके वहां लेट जाऊंगा। इमाम साहब फरमाते मुझे तो वजद हो गया। मैंने तीसरी बात की, मैंने कहा तू किस किस्म की गिजा खाता है, क्या खाएगा, तो फरमाते कहने लगा हुजूर जो लुकमा बच गया ना वो दे देना, मैं चुप करके खा लूंगा। हजरत इमाम साहब कहते हैं मैं भी रो पड़ा, वो भी रो पड़ा। मैंने कहा उठ यार गले से लग, तू गुलाम बनने के नहीं, तू तो आका बनने के काबिल है। तेरी देखे ना हजरत बाबा बुल्ले शाह साहब, बाबा साहब फरमाते हैं कि एक कुत्ता होता है, हम उसके मालिक होते हैं तो एक रोटी डालते हैं, और कई दफा दूसरी मांगे तो जूता भी उठा लेते हैं, सारी रात में पहरा देता है। हम सोते हैं पंखे में एसी में, और वो सुबह जाके सोता है किसी नाली में, रुख पंजाबी में दरख्त को कहते हैं, वो जाके ना किसी रुख में जाके दिन को सो जाता है। आप फरमाते हैं तूने कभी सोचा नहीं जिसका तू मालिक है तू अपनी नेमत देख और उसका काम देख और जो तेरा मालिक है, तू उसकी नेमतें देख और अपने करतूत देख। फरमाने लगे राती जागे ते शेख सदावे, राती जाग दे कुत्ते तैथू कुत्ते रुखा सुखा खा, दिने जा रुखा विच सुते तैथू उत्ते ते मालक दा दर मूल न छट दे, पावे मारो सौ सौ जुते ते तैथू उत्ते एक बुरकी दा कदर पुछानन, पावे मालक होवन सुते तैथू उत्ते उठ बुलिया चल यार मना लै, नहीं ते बाजू लै गए नहीं कुत्ते। उठ बुलिया चल यार मना लै, सारी जिंदगी बहस में गुजरेगी। इराक अब किसी मुल्क का नाम नहीं, लीबिया किसी मुल्क का नाम नहीं, शाम अब किसी मुल्क का नाम नहीं, ये मुल्क नहीं रहे। काफर थक गया मुसलमान को मार मार के, पर मुसलमान एक दूसरे को मार मार के नहीं थका। काफर थक गया, इराक में जिस गिरोह की जितनी उसका कब्जा है उतने हिस्से पे वो काबिज है, जिस इलाके में जितना कोई पावरफुल है उतना वो उस पर, वो बाकायदा कोई मुल्क नहीं। आप इराक जाएं तो सामने से एक शख्स आता है, शहजादा लगता है वो आते हुए, शहजादा। लेकिन जब वो करीब आके हाथ पे लाके कहता है ना, मैंने कल की रोटी नहीं खाई, तो फिर कलेजा मुंह को आता है। ये पता है इराक कौन सा मुल्क है? ये मौला अली शेरे खुदा का मुल्क है, ये इमाम अली मकाम का मुल्क है, और क्या बताऊं आपको, ये गौसे पाक जेलानी का वतन है और कोई मुल्क नहीं। क्यों भला? वो इसलिए कि अमल कब करना है, हम तो इस तरफ आते ही नहीं, हम तो उन कैफियात से दूर हो गए जो हमारी असल कैफियात थी। हमारा तो सुरूर ही नहीं अब, हम हमारा तो उस कौम से ताल्लुक है जिससे हम अभी तक नमाज का और दाढ़ी का वादा ले रहे हैं। अभी तक वो जिहाद की बात और वो सवा अरब काफिर को मुसलमान करने की बात और दुनिया में दीन का, वो तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं ना, वो पता नहीं हमने कब करनी है। अभी हम जनाजों में खड़े होकर ये ऐलान कर रहे हैं कि मियां जनाजा किस किस को आता है। हमारा तो उस कौम से रिश्ता है जो अभी तक वुजू नहीं सीख पाई, तो हमने तो उसे इमाम फखरुद्दीन राजी का फलसफा समझाना था, हमने तो इमाम गजाली का तसव्वुफ समझाना था, हमने तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमातें रुश्द व हिदायत देनी। जिस कौम से अभी तक हम ये मोटा मोटा वादा नहीं पूरा करा सके। मैं कभी कभी ना दुख आता है कि यार मैं अपनी कौम के बच्चों से दाढ़ी नहीं रखा सका, और सिखों का हर बच्चा दाढ़ी रखे हुए, वो झूठे को मानते हैं पर पगड़ी दाढ़ी नहीं छोड़ते। और यहाँ अजीब रिवाज है, मेरे भाई जो गुलाम थे उन्होंने बहस नहीं की, उन्होंने गुलामी की। मैं आपको बताऊं, उनकी अकल में नहीं बिना बात आई, उन्होंने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। कुल 14 सवाल आते हैं जो सहाबा ने नबी पाक से पूछे, वरना उन्होंने कभी बहस, जो हुजूर ने कह दिया सब ठीक है, जो सरकार ने फरमा दिया। सहाबा मैदान अरफात में थे, 9 ज़िलहज को हज होता है, हाजी 9 ज़िलहज को मैदान अरफात में जवाल के वक्त से लेकर मगरिब तक अरफात में रहते हैं। कुल सहाबा वहां थे और 144,000 के करीब का मवेश। नबी पाक ने उनसे पूछा आज दिन क्या है, तवज्जो है मेरी बात पर, तो हुजूर ने पूछा भी आज दिन कौन सा है, एक ने भी उठ के नहीं कहा कि मैं जी पढ़ा पढ़ा लिखा हूं, मैं बड़ा अकलमंद हूं, हुजूर जी ये ज़िलहज का महीना है। फरमाया कौन सा दिन है, तब अल्लाह व रसूल वालम, अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने। नबी पाक ने फरमाया तारीख क्या है, कहा अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि महीना कौन सा है, अल्लाह जाने और अल्लाह का। बाद में सहाबा बैठे तो एक शख्स ने कहा यार अजीब लोग हो, इतने बड़े मजमे में से किसी को नहीं पता था दिन क्या है, तारीख क्या है, महीना कौन सा है। कहने लगे सब कोई पता था, पर हमें क्या जरूरत है बताने की, था ज़िलहज, पर अगर हुजूर कह देते मुहर्रम है तो हमने मुहर्रम ही बना लेना था, थी 9 तारीख, पर अगर महबूब फरमाते नहीं 21 है तो हमने 21। मेरी बात को समझो, हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए।